ये आकाशवाणी है। सामायिकी में प्रस्तुत है बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आधिकारिक संरचना विशेषज्ञ सोमा बनर्जी और पत्रकार सरोज सिंह।
मोदी सरकार को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। आज के दिन देश को कई योजनाएं मोदी सरकार ने समर्पित की हैं। उनमें से एक है ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला और सादिया घाट के बीच बना पुल। यह किसी भी नदी पर बना देश का सबसे बड़ा पुल है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के जनता को क्या क्या फायदा मिलेगा, इस पर बात करेंगे आज हम। हमारे साथ मौजूद हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट सोमा बनर्जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की जनता को कितना बड़ा फायदा होगा अगर हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस बिल्टअप की बात करें तो?
देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है हमारे देश में, 7 बहनों की क्षेत्र कहा जाता है उसे, वो हर वक्त ऐसे ही लगता था बड़े सालों से कि वो देश से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उनको ज्योग्राफिकली बहुत डिस्टेंस उनका था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अगर आप देखोगे तो पिछले साल ही उनके साथ ट्रेन कनेक्टिविटी भी ठीक से हुई है। तो वहां के जो लोग हैं उनको हर वक्त यही लगते थे कि हम भारतीय तो है पर भारत के हिस्सा नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश उनमें से एक और स्टेट है, वहां की जो कठिनाइयां हैं, पहाड़ है, मौसम है, दूसरी तरफ वो बॉर्डर स्टेट है चाइना की तरफ से, तो जियोपॉलिटिकली भी वो बहुत टेरेन है जहां सब कुछ बहुत मुश्किलों से होती है। उस स्टेट को अब इस कनेक्टिविटी के कारण अब वो बिल्कुल हिस्सा बन गया, एक तो असम का जो कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा स्टेट है, और दूसरा असम के साथ जो पूरे देश के साथ लिंक हो रही है। इससे मेरे को लगता है कि एक तरफ लोगों का एक कनेक्टिविटी होगी जो कि बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, और ब्रिज के कारण जो है माल वो भी अब यातायात करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो वैसे वहां हर चीज पहुंचने में बड़ी देर लगती थी। अगर आपको वहां कोई पावर प्रोजेक्ट भी बनानी है, रास्ते ठीक नहीं होते तो इक्विपमेंट ही नहीं पहुंचते थे। तो मेरे को लगता है कि ये जो किया गया है आज, ये उन लोगों के लिए और उस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है।
आपने अभी बात की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अरुणाचल प्रदेश की, तो क्या इस पुल के बन जाने से स्ट्रैटेजी वाइज भी हमें चाइना के साथ कुछ फायदा मिल पाएगा क्या?
ये बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे स्ट्रक्चर में और ये पूरे पॉलिसी में मैं कहूंगी, क्योंकि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को अगर हमें सिक्योर रखना है देश के लिए, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को हमें जुड़ना है, और ये जुड़ने की एक व्यवस्था है। एक तरफ तो आपकी डिफेंस जियोपॉलिटिकल रिस्क है क्योंकि आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, पर उसको और मजबूत करने के लिए बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के लोगों को आपको अपनाना है। यही स्टोरी आप कश्मीर में भी देख रहे हैं, जहां भी हमने देखा है कि बाहर के कंट्रीज से या तो टेररिस्ट से कहीं से भी अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो लोगों को जोड़ना बड़ा फर्स्ट इम्पोर्टेंस होता है। तो इसमें हम देखेंगे इस ब्रिज के कारण जो है कि वो पहलू सामने आ जाएगी, और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इसमें बहुत ज्यादा महत्व रखता है।
आपने कश्मीर की बात की, अभी पिछले दिन हमने देखा प्रधानमंत्री गए थे लॉन्गेस्ट रोड टनल का उद्घाटन करने के लिए, वो भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ही एक प्रोजेक्ट था। तो पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो रोड एंड शिपिंग मिनिस्ट्री ने जिस हिसाब से रिवर पे पुल बनाया या रोड पुल का निर्माण किया, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और दोनों को मेन लैंड से जोड़ने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की हो रही है?
इसको अगर हम पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली देखें इस सरकार के 3 साल की नीतियों को, पर्टिकुलरली कनेक्टिविटी पे, तो इसका एक बहुत ही यूनिक एंगल रहा है कि आप कनेक्ट कीजिए पूरे देश को, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो पोर्ट से हो, चाहे वो इनलैंड वाटर, जो कि इसके पहले हम लोग उसकी बात करते ही नहीं थे, जबकि भारत में हमारे इतने नदियां हैं और हमारा कोस्टलाइन इतना गहरा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात ही नहीं करते थे, और चाहे वो एविएशन हो। तो अभी जम्मू कश्मीर को ले लीजिए आप, जिस तरह से उन्होंने जोड़ा है पूरा जो टनल है
उधमपुर बालापुर,
बिल्कुल, और वो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि एक रीजन जो आपको मैंने पहले भी बोला कि वो बड़ी मुश्किल होता है वहां काम करना, लोगों को बड़ी मुश्किलें उठाने पड़ती है, उसके ऊपर वहां के जो पहाड़ है उसके बीच काम करना, प्लस वहां का जो माहौल है उसको लेके, फिर वही एक ही बात हो जाती है कि आप किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, किस तरह से उस क्षेत्र को देश के अंदर ला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वहां की विकास किस तरह से होने वाली है। तो मुझे लगता है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन है, इसका जिस तरह से इस सरकार ने पहलू से देखा कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है। अगर आप देखेंगे तो रेल मंत्रालय और रोड मिनिस्ट्री और शिपिंग मिनिस्ट्री एक ही तरफ से जैसे कि एक ही नेटवर्क के ये डिफरेंट प्लेयर्स है, इस तरह से वो काम करते हैं, ये हमने पहले नहीं देखा।
ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, इसको NPP का एक नाम भी दिया है सरकार ने, जिसमें वो कोशिश कर रही है कि रेल और रोड और शिपिंग सबको एक साथ जोड़े। आपने बात की कोस्ट लाइन की, तो 75,000 किलोमीटर की हमारी जो कोस्ट लाइन है उस पर एक सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू करने की बात नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल रहेगा कोस्ट लाइन को हम इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अगर हम डेवलप कर रहे हैं।
तो देखिए, ये पहले हमारे पोर्ट्स तो होते थे देश में, लोग बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे ऐसे पेनिनसुला है, हमारे दोनों तरफ ऐसे महासागर है, पोर्ट्स तो होते थे पर पोर्ट्स की कैपेसिटी उतनी नहीं होती थी। तो इस सरकार ने सबसे पहले जो किया कि 12 बड़े मेजर पोर्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन पोर्ट्स को जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है और साथ साथ उनके पोर्ट सिटीज भी बना रही है। तो ये नहीं कि सिर्फ पोर्ट्स बन जाए, अब पोर्ट्स के साथ साथ जो शहर है उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, उसके साथ जो है कि रेल कनेक्टिविटी किया जा रहा है कि जिस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है वो पोर्ट तक आए रेल से और अपना सामान ले और चले जाए। तो ये जो तालमेल है दोनों में, ये बहुत जरूरी थी, जो हमारे प्लानिंग में पॉलिसी में नहीं थी। दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इनलैंड वाटर, जो मैंने अभी उसका जिक्र किया। इनलैंड वाटर जो है वो हमारे अंदर की नदियों की है। अब देखिए, पहले हम इसको यूज ही नहीं करते थे। अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देखोगे तो रेलवे का एक कॉस्ट है, रोड का एक कॉस्ट है, वाटर का एक कॉस्ट है। सबसे ज्यादा है आपका रोड का कॉस्ट, और बिकॉज हम लोगों का जो रेलवे सिस्टम था वो उतना एफिशिएंट नहीं था, हमारी जो गुड्स थे वो ज्यादा से ज्यादा रस्ते पे चल रहे थे, रेल पे कम चल रहे थे और पानी में तो बिल्कुल ही नहीं कम थे। अब सरकार ने ये बोला है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीज इनलैंड वाटर में चलाना है। उससे दो चीजें होती है, एक तो आपका कॉस्ट सबसे कम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जब आप मैन्युफैक्चर करते हो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात पोल्यूशन, क्योंकि आप जो है रस्ते पे या रेल से चलाएंगे तो आप डीजल फूकोगे, इलेक्ट्रिसिटी खर्चोगे, यहां जो है आप पानी के इस माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज के गोल्स है वो भी मीट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो ढांचा इन्होंने बनाया है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये पहली बार मुझे लग रहा है कि सारे इंडस्ट्रीज, सारे मिनिस्ट्रीज एक साथ एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में अब एक यूनिफॉर्मिटी आ रहा है कि कोई कनेक्टिविटी में।
जिस तरह से नए पुल का उन्होंने जो देश को समर्पित किया है उसमें एक फैक्ट एंड फिगर्स आ रहे हैं कि 10 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की हर दिन की बचत होगी, तो कितना बड़ा ये अमाउंट है।
हमारा जो क्रूड उत्पादन है वो बहुत कम है, हम 80% हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। अब किसी देश के लिए जो इतना इम्पोर्ट डिपेंडेंट होता है, वो भी फॉसिल फ्यूल पे, ये हर वक्त एक चेतावनी की बात होती है, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन हमारे फिस्कल डेफिसिट पे होता है, हमारे इम्पोर्ट बिल पे होता है। तो इसीलिए इसमें हमारा स्वाधीनता होना बहुत जरूरी है।
एक्सप्रेस वे का भी निर्माण किया जा रहा है रोड की तरफ से, खास तौर पर दिल्ली जैसे शहरों को डीकंजेस्ट करने के लिए। तो इस एक्सप्रेस पेरिफेरल को आप किस तरह से देखती हैं?
देखिए, इन्होंने हर चीज में बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेके काम किया है। अब एक तरफ ये अपना चला रहे हैं स्मार्ट सिटीज और अमृत, जो कि शहर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग रोज आना गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं नौकरी की खोज में। तो जब शहर बढ़ेंगे तो शहर में कंजेशन बढ़ेगा, तो वहां ट्रैफिक बढ़ेगी, तो वहां मोटर व्हीकल्स बढ़ेंगे, तो वहां रस्ते आपके ठीक नहीं होंगे और कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी, तो फिर शहर उसका प्रेशर ले नहीं पाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि अर्बन सेंटर्स में, सिटीज में कितना ट्रैफिक बिल्डअप होगा, ये एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे, सिटी टू सिटी कनेक्ट भी हो रहे, जैसे हम दिल्ली मीरठ आपने देखा होगा कि कितनी तेजी से वो बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कनेक्टिविटी है, एक तरफ एक्सप्रेस वेज है जो सिटी के सिटी कनेक्ट करती है, सैटेलाइट सिटीज को कनेक्ट करती है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सामायिकी में अभी आप सुन रहे थे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी आधिकारिक संरचना विशेषज्ञ सोमा बनर्जी और पत्रकार सरोज सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in।